जो बात आप भाई आपसे अर्ज करना है वो ये कि अल्लाह ताला की तौफीक से पिछले कई बरस से आप हजरात की तरफ से पाकिस्तान में जो ज़कात और सदकात और मुख्तलिफ रकूम भेजने का जरिया शुरू हुआ था या सिलसिला शुरू हुआ था, उससे अल्लाह का एहसान है कि बहुत से मुफीद काम हुए। और उन मुफीद कामों में एक बहुत बड़ा काम वो ये कि अल्हम्दुलिल्लाह लाइब्रेरी पूरी इस्टेब्लिश हुई, और इसी तरह दीगर ज़राए से भी हासिल होने वाली आमदनी से एक अच्छी मस्जिद की और एक अच्छे सेंटर की तामीर हो गई। और ये खुदा का एहसान है कि अब यहाँ पर अगर फर्ज कीजिए 5,000 अफराद भी नमाज के लिए आ जाते हैं तो कोई दिक्कत और कोई मसला नहीं है। और रमजान मुबारक में बहुत से दोस्त जो जमा होते हैं और एतकाफ की गर्ज से और बाज तालीम और तरबियत के लिए जो तशरीफ आवरी होती है जिन लोगों की, वो सहूलतें भी मिली। आहिस्ता 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 सरमाया इस हिसाब से आता रहा, उसी हिसाब से खर्च भी होता रहा। और आप सब जानते हैं बाशऊर अफराद हैं कि जिंदगी में जराए और मकासिद में फर्क होता है। जराए मकासिद नहीं बनते और मकासिद जराए नहीं बनते। मकसद अगर एक सेंटर कायम करना और ये चीजें थी तो पैसा उसका जरिया था, ये बात नहीं थी कि पैसा बजाते खुद मतलूब है। इसलिए लाइब्रेरी को अगर अब आप देखेंगे तो वो चीज तसव्वुर से बाला है जो आज से 5 साल लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, दिन रात मेहनत में लगे हुए हैं और उम्मीद है कि शायद 1-2 साल लगे और ये सारी लाइब्रेरी डिजिटलाइज हो जाए, और उस सूरत में पूरी दुनिया के लिए एक्सेसिबल होगी कि वो ये देख सकें कि यहाँ पर कोई किताब मौजूद है नहीं है। अब सूरत हाल अल्लाह ताला के फजल करम से ये है कि पाकिस्तान भर से मुल्क से लोग आते हैं, बच्चे जिन्होंने डॉक्टरेट करनी है जिन्होंने एम फिल करना है आते हैं, किताबों से इस्तेफादा करते हैं और कोई पाबंदी उन पे नहीं है। वो तो दिन रात जिस वक्त चाहें लाइब्रेरी में जाएं, बैठें, पढ़ें। और अपनी आंखों से ये चीज देखता हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा इत्मीनान होता है कि अल्लाह का शुक्र है कि उसने ये दिन दिखाए। इसी तरह आप जो लोग जो कुछ भी करते रहे उसका एक बहुत बड़ा और अच्छा और खैर का पहलू ये है कि लंगर जारी है, जो लोग यहाँ काम करने के लिए आते हैं वो भी, और जिस इलाके में ये बना है यहाँ चूंकि आमदनी के मुआश के जराए लोगों के लिए नहीं है, पहाड़ी इलाका होने की वजह से तो जो मजदूर भी आते हैं किसी काम में होते हैं वो भी यहाँ आके मुफ्त खाना खा लेते हैं। और इसी तरह जो लोग रिसर्च वर्क के लिए आते हैं उनके लिए भी 3 वक्त का खाना अल्हम्दुलिल्लाह मयारी खाना फ्री मिलता है और वो लोग यहाँ आके खाना भी फ्री खाते हैं, रिहाइश है, सोना है, फ्री है, बाकी सहूलतें भी हैं। तो ये सारी चीजें चंद साल की मेहनत और सरमाए से सब तामीरात हुई है। इस मरतबा रमजान में ये लोग यहाँ पे कुछ कोशिश कर रहे हैं बाकी दोस्त और रफका कि यहाँ हर रोज जो कुछ एक्टिविटीज हैं वो वीडियो के जरिए आप लोगों तक पहुँचती रहें और आप उसे देखें। और इसमें अल्लाह ताला के फजल के बाद हकीकी हिस्सा आप ही लोगों का है। हम ये नहीं कह रहे बड़ा हिस्सा, हम कह रहे हैं कि हकीकी हिस्सा आप ही लोगों का है कि आपने जो कुछ भी भिजवाया अल्लाह की तौफीक से यहाँ खर्च हुआ और आपका पैसा जिस दयानतदारी से खर्च हुआ है मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इत्मीनान भी है कि ना हम में से किसी ने भी उससे कोई जायदाद बनाई है, ना किसी के पास कोई अकाउंट में लाखों क्या हजारों के हिसाब से भी पैसे नहीं है। जो अमला काम करता है अल्लाह ताला का एहसान है कि महीने 2 महीने में नागा भी हो जाए तो तनख्वाहें पूरी हो जाती हैं, लेकिन ये एक इत्मीनान की कैफियत से चीजें चल रही हैं। और जो चीजें आप देखेंगे इंशाल्लाह वीडियो के जरिए आपको भी इत्मीनान होगा। या किसी शख्स ने उस पैसे का ऐसा इस्तेमाल नहीं किया कि वो अपनी जात के लिए उसे इस्तेमाल करे, बल्कि तमाम तर चीजें इसी मकसद के लिए। एक लेवे के जो जरा सी काबिल एतराज बात बन सकती है वो ये कि पिछले 8-9 साल से हमने बहुत बहुत अच्छी गाड़ी इस्तेमाल में रखी हुई है, और उसकी वजह ये नहीं है कि पैसे का कोई गलत इस्तेमाल है, उसकी वजह यहाँ हमारे मुल्क के हालात और ख़ास तौर पे पुलिस के रवैये और ये चीज़ें हैं, और उस मजबूरी से ये काम करना पड़ा। इसके अलावा खुद कोई ऑब्जेक्शनेबल चीज़ हमारे लिए नहीं है। तो बहरहाल कहने का मकसद ये है कि लंगर जो चल रहा है और उससे हजारों लोग मुस्तफीद होते हैं, तो आप ही के पैसे और दौलत का वो हिस्सा है जो यहाँ आता है और इन लोगों पे खर्च हो जाता है। इसी तरह जो लोग यहाँ आते हैं, कयाम करते हैं, स्टूडेंट्स हैं, पढ़ते हैं, और इस मरतबा ये हुआ है कि हमारे यहाँ के इदारे के बच्चों ने हिफ्स किया है, और अब हिफ्स के बाद बहुत मुश्किल ये पेश आ रही थी कि यहाँ पे उनकी मजीद तालीम का बंदोबस्त किया जाए। ये असबाब और वसाइल देखते हुए मेरा ख्याल यही था कि इसे ना किया जाए, और बस हम एक हद तक हिफ्स ने अब स्टैब्लिश कर ली है इसे, तो कुरान करीम की हिफ्स की तालीम और प्राइमरी तक की एजुकेशन पर इक्तफा कर लेना चाहिए, मजीद इसे इस तरह नहीं बढ़ाना चाहिए। लेकिन जो बाकी लोग काम कर रहे हैं, हम सबका इसरार ये था कि नहीं, हमें इस साल से शुरू करना चाहिए, और अब ये सूरत हाल है कि बच्चों का पहला साल जब वो कुरान पाक से फारिग हो जाए तो उनके लिए इंग्लिश, अरबी और पर्शियन, ये तीन जबानें हैं जिसके लिए तय हुआ है कि अगर हम अपने बच्चों को अब मजीद तालीम शुरू कराएंगे तो पहला साल उनका तीनों बेसिक लैंग्वेजेस और ये चीजें पढ़ने का होगा, उसके साथ मैथ या थोड़ी बहुत कोई और चीज शामिल की जाए। और इस साल अगर एक साल वो इस पे कम्प्लीट कर लेते हैं और लैंग्वेजेस से उन्हें मुनासिबत हो जाती है, तो फिर हम उनके लिए बाकायदा एक निसाब शुरू करें। इसी तरह तीसरी बड़ी चीज जो आप तक खबरें पहुंचती होंगी, आप लोगों ने मुमकिन है सुना हो, देखा हो कि मुल्क के बड़े बड़े लोग यहाँ जो तशरीफ लाते हैं उसकी बुनियादी वजह ये तामीरी काम है, जो इतने पुरआशोब दौर में और खास तौर से पिछले 15 साल जो है 1999 से लेके और अब तक जो पूरी दुनिया में सियासी सूरत हाल रही है, उन सारे हंगामों में खामोशी से अपना काम करना और एक मुस्तक जहद की तरफ तरक्की करना, ये बहुत बड़ी चीज है। और इसमें आप देखेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगर अल्लाह ताला को मंजूर हुआ तो इस वक्त यहाँ जो काम हनफी फिका पे और इस्लामी कानून पे हुआ है, ये जो चीजें लिखी जा रही हैं, तहरीर की जा रही हैं, अगर खुदा को मंजूर हुआ 2-4 साल में ये सामने आई तो इतनी बड़ी बड़ी किताबें हैं 10-10 जिल्दों में, 15-15 जिल्दों में, कि अगर ये काम पूरे हो गए और छप के वो मार्केट में आई तो इल्म की दुनिया में एक तरह का एटमी धमाका है। लोगों के तसव्वुर में ये नहीं है कि वो कितनी बड़ी चीजें देखेंगे। आपसे जो पैसा मिला, हमने सफर किया दुनिया के 25-30 ममालिक से, मुसलमानों के नवादरात जमा किए, और अब हमारे पास जो कलमी नुस्खे जो मखतूतात हैं उनकी तादाद 400 से ज्यादा है इस वक्त, और वो भी 400 वो हैं जो बाकायदा तरतीब में, एक साहब की ड्यूटी लगा रखी है वो बाकायदा उसे तरतीब में करते रहते हैं, और वो नुस्खे 5वीं सदी हिजरी के, 4वीं सदी हिजरी के, 8वीं और 10वीं सदी हिजरी के, यानी आज से 1000 साल पहले के नुस्खे भी मौजूद हैं, और जो अब रिसर्च वर्क उस पर हो रहा है तो इंशाल्लाह आ जाएगा। उसकी एक मिसाल आपने मसलन रेज़ा अलमास पढ़ी होगी जो हमारी अपनी किताब है, तो उसके छपने पे उसके अखराजात भी अच्छे खासे थे, लेकिन अल्लाह ताला जज़ाए खैर ने नवीद साहब ने उसे बर्दाश्त कर लिया और वो छप के मार्केट में आ गई। अब जो किताबें पेश नजर हैं कि वो छपें और शायद साल 1 में या 2 साल में वो सामने आना शुरू हो, वो ऐसा प्रोजेक्ट है जो करोड़ करोड़ और 1.5-1.5 करोड़ रुपए की मालियत से 10-10 जिल्दें और 5-5 जिल्दें छप के अगर सामने आए, तो फिर आप में से जो लोग, खैर अगर से इनसे सारा ताल्लुक आप लोगों का है, लेकिन जो मशरकी अलूम से जिन्हें कुछ वाकफियत और मुनासिबत है वो कदर जान सकते हैं कि कितने नायाब जखीरे हैं मुसलमानों के, जिससे इंशाल्लाह भी इजाफा होगा। चाहे हम एक किताब पब्लिक में ला सकें, दो किताबें, पांच किताबें, जो कुछ भी खुदा ने होता है, लेकिन खुदा को मंजूर होता है, मगर एक इदारे की एक चीज की बुनियाद पड़ती। तो ये लंगर है, लाइब्रेरी है, तीसरी चीज बच्चों का पढ़ना है, चौथी चीज ये किताबों पे रिसर्च वर्क है। ये सब चीजें जो आप देखते हैं ये पूरी उम्र की मेहनत का नतीजा है। अब ख्याल ये है, और जिस पे किसी हद तक अमल दरामद भी हुआ है पिछले दो साल से जो जद्दोजहद जारी थी, वो ये था कि हम लोग हिम्मत करके एक मशरकी अलूम के लिए एक यूनिवर्सिटी बनाएं। मगरबी अलूम जितनी तरक्की कर चुके हैं और वेस्ट भी जितनी तरक्की हो चुकी है, इस पे कुछ कहने की जरूरत नहीं। अल्लामा इकबाल ने अपने फारसी के कलाम में बड़ी अच्छी बातें कही हैं और गैर उर्दू में भी कही हैं। एक जगह वो कहते हैं कि अगर फर्द ये दावा करे कि वो खुदा है तो यकीनन उसे सजा मिलनी चाहिए, और अगर कौम ये दावा करे कि वो खुदा है तो ये नारवा बात नहीं है, माननी पड़ती है। इस वक्त आप जिस मुल्क में हैं और जहाँ के आप बाशिंदे हैं, अगर वो मुल्क ये दावा करता है कि इस वक्त दुनिया में वही खुदा है तो ये कोई नारवा बात नहीं है। इस वक्त दुनिया पूरी की पूरी उन्हीं की मुट्ठी में है, और जैसे चाहें और जो पॉलिसीज हैं जो इंसानों के लिए बेहतर समझते हैं, चाहे हमारी समझ में आए या ना आए, लेकिन बहरहाल गलबा उनका है। उस गलबे की बुनियाद इल्म है उनका, और मगरबी अलूम और यूनिवर्सिटीज जिस हद तक पहुंच गई हैं, अब हमारे यहाँ आलम इस्लाम में गिनी चुनी यूनिवर्सिटीज भी नहीं है जो उस दर्जे तक पहुंच सके। हम चूंकि खुद मगरबी अलूम के माहिर नहीं है, इसलिए कुछ नहीं कह सकते कि मुसलमानों में ये तालीमी बेदारी और ये चीजें कब होंगी। लेकिन आप पिछले अपने यहाँ की हिंदुस्तान और पाकिस्तान की 150 साल 200 साल की तारीख को देखें, तो 57 की जंग आजादी में और उसके बाद 1835, उससे भी पहले 1835 में जो हिंदुस्तान की तालीम का निज़ाम बदला गया, उस तालीमी निज़ाम के बदलने से जो असरात मुरतब हुए, हम तो क्या हमारी नस्लें भी उन असरात से बाहर नहीं निकल सकती। और वो एक ऐलान था जिसका पिछली मरतबा तज़किरा ने तफसील से कर दिया था कि गवर्नमेंट ने जो ऐलान किया उसको अब दोहराने की गालिबन जरूरत नहीं है। तो उस वक्त से लेके अब तक क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख और क्या पारसी, बर सगीर में वो इल्मी तरक्की जितनी भी हुई है बहुत कम हुई है, लेकिन दूसरी तरफ पूरे बर सगीर को और दुनिया भर की सियासत से जो सरअंदाज हुए हिंदुस्तान के जरिए से, बर सगीर के जरिए से, वो दो तालीमी इदारे और पूरे के पूरे बर सगीर क्या इस वक्त वो दीनी हलकों का जो फैलाव हुआ है, तो पूरी दुनिया को जिसने दीन के एतबार से मुतासिर किया है, वो देवबंद का हल्का है, देवबंद है, मज़ाहिरुल उलूम सहारनपुर है, नदवा है, ये सारे इदारे एक ही तरह के हैं, और इन्होंने गोया पूरी दुनिया में मजहब पर अपनी गिरफ्त सख्त की है, मुकम्मल रखी है, और अब तक लोग इससे बाहर नहीं है। देवबंद ने खालिस किताब व सुन्नत की तालीम दी, नदवा ने उसमें शायरी, अदब, तारीख, इन चीज़ों का इजाफा किया, अलीगढ़ ने जदीद दुनिया की तालीम दी। बहरहाल ये तीनों धारे इस वक्त भी बह रहे थे, और इसी का एक हिस्सा बनने वाले मज़ाहिरुल उलूम सहारनपुर है, और उसी का एक हिस्सा तबलीगी जमात है, और आज तबलीग दुनिया के अक्सर व बेशतर ममालिक में पाई जाती है। काम से इत्तेफाक या इख्तलाफ एक अलग बात है, मगर ये कि देवबंद और उसके मुतालिका जो इदारे हैं उन्होंने पूरी दुनिया पर अपना कब्जा अब तक रखा है, और अब तक लोग दीन के बारे में इन्हीं उलमा से रजू करते हैं, बराह रास्त हो या बिलवास्ता, लेकिन बहरहाल ये फैज उसी का। दूसरी तरफ अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को देखें तो अलीगढ़ ने जितने अफराद पैदा किए थे, जो लोग थे, उन्हीं की वजह से बड़े शरीर में जो तरक्की आपको कुछ नजर आती है, इन्हीं की मरहूम मिन्नत है। हमारी मुमलिकत का वजूद इन ہندوستان میں انگریزوں سے آزادی، بنگلہ دیش کا قیام، یہ ساری چیزیں، اور ہمارے ہاں تو خاص طور پہ 70s تک 80s تک علی گڑھ کے لوگ چھائے رہے اور انہوں نے پالیسیز مرتب کی. تو یہ سب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دو تعلیمی ادارے، تین چار تعلیمی ادارے، اور انہوں نے پوری دنیا کو متاثر کیا. اب مغربی علوم میں ہمارے ہاں کوئی اتنی اچھی یونیورسٹی قائم ہو جائے، اس سلسلے میں بھارت میں جو کچھ ہو رہا ہے جو ہم نے 2012 میں دیکھا اور بہت قریب سے مشاہدہ کیا، وہ ہم سے بھی اس معاملے میں بہت آگے ہیں. اور ان کے ہاں وزیر اعظم نہرو نے، پنڈت جواہر لال نہرو نے ان چیزوں کی بنیاد رکھی تھی، وہ اب پھل پھول سامنے آ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے ملک کو کون سی پالیسی دی تھی. اور ادھر ہمارے ہاں مغربی علوم کی ایسی سرپرستی کچھ عرصے کے لیے ہوئی ہے، مگر پھر بھی زیادہ نہیں. جہاں تک مشرقی علوم کا تعلق ہے، وہ ناگفتہ بے حالت میں چلتے چلے جا رہے ہیں. مدارس کا قیام اور ان چیزوں کا قیام کم ہو رہا ہے، لیکن اگر جس لیول پہ بھی ہو رہا ہے، تعلیم میں جو ترقی کا معیار ہے وہ حاصل نہیں ہو رہا. نتیجہ اس کا یہ نکلا ہے کہ مشرقی علوم کے ماہرین کم ہو گئے ہیں، بہت کم ہو گئے ہیں. ہمارے یہاں ادب پہ کام نہیں ہو رہا، کتاب و سنت پہ اس درجے کا کام جو درجہ مطلوب ہے اجتہاد کو، وہ علماء پیدا نہیں ہو رہے. انگریزوں کا قانون نافذ ہونے کی وجہ سے بہت بڑی تباہی جو ہمارے یہاں آئی ہے وہ یہ کہ اجتہاد کا عمل رک گیا ہے. اس سے پہلے یہ تھا کہ اسلامک لاء تھا تو وہ قاضی نئے سے نئے آنے والے مقدمے، نئے سے نئے فیصلے کرتے تھے، غلط صحیح فیصلے ہوتے تھے، پھر اوپر کی کورٹ میں جاتا تھا، اس سے اوپر پھر قاضی القضاۃ، چیف جسٹس وغیرہ وغیرہ. تو ایک اجتہاد کا مسلسل عمل جاری تھا جو ہمارے زمانے میں قانون کے نفاذ نہ ہونے کی وجہ سے رک گیا. لیکن قانون کا نفاذ کون کرتا؟ تو ظاہر ہے کہ علماء. ہمارے یہاں ملک میں اسلامی قوانین اور معیشت کے لیے جو سب سے بڑا نام ہے اس وقت مولانا تقی عثمانی صاحب کا ہے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ مولانا جیسے آدمی ہی کتنے ہیں ہمارے، بہت تھوڑے، نہ ہونے کے برابر. اور اسی طرح جو ہمیں بہت بڑا نقصان پہنچا اسلامک جورسپونڈنس کو اور قانون کو اور ان چیزوں کو، کہ انگریزوں کا قانون ہونے کی وجہ سے اجتہاد کے علاوہ وہ جو اسلامی نظام کی برکات ظاہر ہوتی ہیں یا قانون کے جو فوائد ظاہر ہوتے ہیں، وہ بھی ظاہر ہے جب قانون میں نافذ ہوا تو اس کے نتائج کہاں سے ہوتے. تو اس لیے مشرقی علوم، اسی طرح اگر آپ دوسری طرف مشرقی علوم کو دیکھیں، تو طب ایک پروسیس تھا جو آہستہ آہستہ چل رہا تھا ہندوستان میں. نامی گرامی اطباء پیدا ہوئے، عقیم اجمل تھے، کرشی تھے، اسلام تھے، اسلام تھے، ہمارے یہاں عقیم سعید، ان کے بھائی گرامی قدر عبد المجید، عقیم عبد المجید دلی میں، جو انہوں نے اپنا پورا ایک کمپلیکس بنایا، یہاں کراچی میں جو کچھ بنا، یہ علم بھی آہستہ آہستہ مٹتا چلا جا رہا ہے. اور اس کا نقصان یہ ہے کہ اس وقت عالم اسلام میں طب کی کتابیں وہ ایک طرح سے بیکار ہوتی چلی جا رہی ہیں. ہم پورے مشاہدے اور سنجیدگی سے یہ بات کہنے کے حقدار بھی ہیں اور کہتے بھی ہیں کہ مسلمانوں نے 1500 سال کی اپنی تاریخ میں جتنا کچھ کتاب و سنت پہ لکھا ہے، اس کے برابر یا اس سے بڑھ کے انہوں نے طب پہ کام کیا. آنکھ ایک موضوع ہے، اس میں ہم نے دیکھا مسلمان نے 12 جلدوں میں کتابیں لکھی ہیں، 4th اور 5th صدی کی کتابیں ہیں. کان ایک موضوع ہے، اس پہ انہوں نے لکھا ہے. دماغ کیسے کام کرتا ہے، اس پہ انہوں نے لکھا ہے. اور بہت سی، اور طب کے ساتھ کتنے شعبے آگے زندگی میں چلتے تھے وہ ختم ہو گئے. نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ ہم اب ساری دنیا کے مسلمان انہی دوائیوں اور اسی میڈیسن اور اسی میڈیکل کے پیچھے چلتے ہیں جو کچھ کے مغرب نے ترقی کی ہے. سرجری میں ان کی ترقی مانی جا سکتی ہے، لیکن تھوڑے بہت ناقص مطالعے کی بنا پر ہم یہ ترقی ماننے کو تیار نہیں ہیں کہ انہوں نے میڈیسن میں بھی کوئی دنیا کچھ کی ہے. اس سے بہتر چیزیں ہمارے یہاں موجود ہیں، کینسر پہ ہمارے یہاں ریسرچ موجود ہے، لیکن مشرقی علوم مردہ ہو جانے کی وجہ سے اب نہ کوئی عربی پڑھے، نہ فارسی پڑھے، نہ ان کتابوں کو دیکھے، और ना ही वो अद्वियात दुनिया में सामने आए कि लोगों को पता चले अगर दो चार हमारी प्रोडक्ट सामने आती और हिट हो जाती तो दुनिया जानती कि मुसलमानों ने इस दुनिया को तिब में क्या दिया। अब इसकी छोटी सी बिल्कुल मामूली सी मिसाल देखें कि ये पूरी दुनिया में इस वक्त जिस चीज की डिमांड है वो इस्लामी दुनिया में वो एक शरबत ले लें रूह अफ़ज़ा। अब ये रूह अफ़ज़ा क्या चीज है हकीम सईद साहब ने बनाया थी, असल में तो उनके घर की एक चीज थी। उन्होंने खुद भी तहरीर फरमाया है कि जब गर्मियों में रमजान आता था तो वालदा साहब ये शरबत बनाया करती थी, तो ये ख्याल आया कि क्यों ना इसे कमर्शलाइज किया जाए। अब उन्होंने कमर्शलाइज किया तो उसका हाल ये है कि अब आपके मुल्क में और लंदन में और कहाँ कहाँ और अफ्रीका में इस कदर उसकी डिमांड है कि यहाँ करोड़ों रुपए लोग एडवांस देते हैं और वो पूरा नहीं हो पाता। तो ये एक मामूली सी मिसाल है, हजार में एक जर्रा समझ लीजिए उसकी मिसाल आपके सामने रख रहे हैं। तो ख्याल में ये आया कि हम जो इतना कुछ आप लोगों के तआवुन से हुआ है तो एक यूनिवर्सिटी कायम होनी चाहिए मशरकी अलूम पे। मगरबी अलूम से हम माहिर नहीं है लेकिन ये कि उन को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, सर से नजर नहीं किया जा सकता। हम लोग मिल के एक यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखें जो वहाँ पे एक बेहतरीन स्कूल कायम हो, वहाँ पे एक अच्छा कॉलेज कायम हो और तालीम से भी 100 गुना ज्यादा तरबियत की जरूरत है। हम जो भी अपने बच्चों को तालीम दें रेजिडेंशियल तालीम हो और हम बच्चों की तरबियत कर सकें जो आगे चल के सिर्फ इस मुल्क में नहीं बल्कि खुदा करे अल्लाह ताला को अगर मंजूर हो तो उम्मत के लिए बेहतर से बेहतर वो काम कर सके। स्कूल और कॉलेज और उसकी अपनी लाइब्रेरी और यूनिवर्सिटी और जो उसकी डिमांड्स हैं वो पूरी करने के लिए जाहिर है कि जमीन का इख्तिताह चाहिए। और आप लोगों के ख्याल में होगा कि पिछली मरतबा जो बातचीत आपसे की गई थी उसके नतीजे में अल्हम्दुलिल्लाह और हमारे दोस्त हैं डॉक्टर आमिर, उन्होंने बहुत कुर्बानी दी और अल्लाह का शुक्र है कि एक बड़े जमीन बड़ी बड़ा किताब तकरीबन 150-200 कनाल 176 कनाल हमारे यहाँ कनाल चलता है पाकिस्तान में, तो गालबन 4 कनाल का 1 बीघा होता है जो हिंदुस्तान में चलता है, तो इसी हिसाब से आप उसको तकसीम करके देख सकते हैं। वो ले लिया गया था 1 करोड़ रुपया उसका अदा करके नवंबर 2014 में उसके कागजात दस्तखत करके वो इंटरनेट पे डाल दिए गए थे फौरी तौर पे ताकि सब लोग देखने के जो उन्होंने डोनेशन की है वो इस काम आई है। अब 1,20,00,000 उनकी अदायगी बाकी है। फिर गुलजार साहब तशरीफ लाए, रिजवान साहब तशरीफ लाए, डॉक्टर आमिर आए, बहुत से दोस्तों ने जिन्होंने भी देखा। अब जो साथ उसके दूसरा कटाया जमीन का वो तकरीबन 280 कनाल से कुछ कम या कुछ ज्यादा ऐसे है। गुलजार साहब आए थे, इन्होंने भी देखा और दोस्तों ने भी कि अगर वो जमीन का कटा भी साथ शामिल किया जाए तो फिर हम इस पोजीशन में आ जाते हैं कि हमारे पास 450 कनाल के करीब जगह हो, एक बड़ी यूनिवर्सिटी तामीर की जा सके और उसमें मुख्तलिफ शोबे कायम किए जा सकें, उसकी अपनी मसाजिद बनाई जा सके। आपने देखा है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जो थी वो इब्तदा में क्या थी और अब अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में जब हम आखिरी मरतबा देखने के लिए गए तो अल्हम्दुलिल्लाह देख के तबीयत खुश होती थी कि अल्लाह का शुक्र है मुसलमानों ने ऐसे 6 इदारे कायम किए। शायद 37 तो उनकी अपनी मसाजिद, इतना बड़ा रकबा और इस रकबे में इजाफा बुनियादी तौर पे सर आगा खान ने किया था, बहुत कुर्बानी उन्होंने दी और आगा खान हम मसलक के तासुब से ऊपर उठ के सोचें तो वो ऐसा खानदान और ऐसा घराना और ऐसा कबीला और ऐसा 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 मकतब फिक्र है जिसने हर दौर में मुसलमानों को कुछ न कुछ उनकी हर नस्ल ने दिया है, तो क्यों नहीं हम भी अपनी अगली नस्ल के लिए एक चीज कायम करते जाएं। तो वो अगर जमीन हम ले लेते हैं तो ये 450 कनाल के करीब जमीन बन जाती है जिसके अल्हम्दुलिल्लाह अब जो पेश नजर है उसके तहत एक काम किया जा सकता है और एक यूनिवर्सिटी के लिए पूरी जमीन खरीदी जा सकती है। यूनिवर्सिटी के लिए जमीन है, फिर उसके नक्शे हैं, बस इस हद तक काम फिलहाल मतलब नक्शे बन जाए और जमीन खरीद लें, ये नक्शे पे इंटरनेट पे आ जाए, फिर जिसका जो जी चाहे अल्लाह ताला के قبضہ قدرت میں ہے. تو پیسہ اصل مقصد نہیں ہے, اصل مقصد تعلیم کے لیے ایک اچھے ادارے کا قیام ہے, اور وہ بھی اسلام آباد جیسے مرکزی ماحول میں, یہاں ایک یونیورسٹی بنائی جائے اور بڑے اطمینان اور خاموشی سے ہم تعلیم کا کام کرتے رہے. اب زندگی رہ کتنی گئی ہوگی, مگر جتنی بھی رہ گئی ہے طالب علمانہ طور پہ بس ہو تو زیادہ اچھا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جس شخص کا انتقال علم کی طلب میں ہو جاتا ہے اللہ اس سے قبر کا عذاب اٹھا لیتا ہے. اس لیے طالب علم ہونے میں کوئی فائدہ ہو یا نہ ہو, ایک بہت بڑی چیز یہ بھی ہے کہ انسان اس تنہائی میں عذاب کا شکار نہ ہو. تو اب پیش نظر یہ ہے, تو اس لیے کسی مرتبہ بھی یہ بات ہوئی تھی, اب پیش نظر اسی چیز کو کر رکھا جائے اور کچھ لوگ بھی ایسے مل جائیں جو اپنی زکات کی رقم جمع کرا دیں, فرد ہو یا افراد کا مجموعہ ہو. پیش نظر یہ ہے, گلزار صاحب آئے تھے, اس زمین کے مالکان سے بھی بات ہوئی تھی, ساری چیزیں ہوئی تھی کہ اگر 100 آدمی بھی ایسے ہوں نا, 5 کروڑ تک پہنچنا چاہیے, 5 کروڑ ٹارگیٹ ہے تک ہم اسے بیانہ کر لیں, مہلت لے لیں آئندہ سال تک کے لیے, اس سے آئندہ سال تک کے لیے پیسے اگر پاس ہوں تو پھر جا کر بات کی جائے کہ جی ہم آپ کو اتنا بیانہ اس کا دینے کو تیار ہیں اور یہ زمین بھی ہمیں دے دیں, قبضہ دے دیں. تو پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ انٹرنیٹ پہ جیسے پہلی زمین کے ٹکڑے کی تصاویر چیزیں ہیں, اسی طرح اس زمین کے ٹکڑے کی تصاویر بھی آ جائیں گی. 5 کروڑ کا مطلب تو یہ ہوا کہ اگر ایک آدمی بھی اپنے زکات اور صدقات میں سے $5,000 جمع کرا دے تو 100 آدمی کافی. پچھلے سال زکات کا جو حساب ہے ہم نے دیکھا تھا تو آپ کے یہاں سے $60,000-70,000 زکات کے بھیجے گئے تھے. تو کام اللہ کا شکر ہے, جس طرح بھی ہوا سو ہو گیا, آپ کے سامنے اس مرتبہ ہمیں اس سے 10 گنا زیادہ قربانی کی ضرورت ہے کہ وہ اگر 60,000 تھے تو اس سال 6 لاکھ $5 لاکھ ہوں اور وہ رمضان میں آ جائیں تو پھر رمضان کے بعد ان سے جا کے بات کی جا سکتی ہے تاکہ ہم ایک اچھی یونیورسٹی کا قیام عمل میں لا سکیں. مشرقی علوم کے لیے یونیورسٹی, اور مشرقی علوم میں ہماری مراد صرف یہی نہیں ہے کہ وہاں پہ کتاب و سنت, اور جتنے بھی علوم مشرق میں تھے ہم کسی طرح انہیں زندہ کرنے کی کوشش کریں. اس میں بہت بڑی بڑی چیزیں, میتھمیٹکس ہے, جیومیٹری ہے, علم نجوم ہے, زبانیں ہیں, مشرق کی زبانیں پرشین اور عربک اور یہ چیزیں, اور خود ہماری اردو زبان, یہ سب چیزیں جو ہیں آہستہ آہستہ عربی کو چھوڑ کے باقی چیزیں آہستہ آہستہ لوگوں سے نامانوس ہوتے جا رہے ہیں. اور وہ علوم جو مسلمانوں میں تھے وہ ایسے ایسے علوم تھے جن کا ڈھونڈنا دشوار ہے, جس کو کوئی ماہر ملے. تو اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہو اور یونیورسٹی کا قیام عمل میں آئے تو ایسے ڈپارٹمنٹس قائم کریں اور دنیا کو دکھا سکیں کہ اب بھی الحمدللہ امت میں اتنا دم خم ہے کہ اگر ایمانداری سے کام کیا جائے تو علم کی ترقی میں ہم لوگ کسی سے پیچھے نہیں ہیں. اور پھر جو بچے وہاں اسکول اور کالج اور اس کی اپنی یونیورسٹی میں انجینئرنگ میڈیکل کالج کا ہم نے آپ سے عرض کیا تھا, اس کو قائم کیا جائے, تو کیا بعید ہے کہ ہمارے بعد کی نسل, آئندہ آنے والی نسلیں ہیں, ان میں سے پھر کبھی مغربی علوم کا احیاء بھی ہو اور مغربی علوم پڑھنے اور پڑھانے والے جنہیں ہم بچے بچپنے میں چھوڑ کے دنیا سے جائیں گے, کل کو کبھی کوئی سائنٹسٹ بنے, کل کو کبھی کوئی اچھا ڈاکٹر بنے, کل کو کوئی اچھا سرجن بنے, فزیشین بنے, جو بھی بنے وہ تو اللہ کے قبضے میں ہے, لیکن ہم ایک چیز کی بنیاد ڈال دیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق یہ کہا ہے کہ وَجَعَلَ کَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ, اور ابراہیم اپنے بعد دنیا میں ایک اچھا جملہ چھوڑ کر گئے. وہ اچھا جملہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ, خدا کی توحید اور شرک سے بیزاری ابراہیم چھوڑ کے گئے دنیا میں. ابراہیم علیہ السلام 2500-3000 سال پہلے شرک سے بیزاری چند لوگوں کو سکھا گئے تھے, آج لاکھوں نہیں کروڑوں افراد ہیں, اور اگر 2500 سال دیکھے جائیں تو اربوں افراد ہوں گے جو اس پاک کلمے پہ اور اس پاکیزہ جملے پہ اپنی زندگی سنوارتے رہے کہ خدا کے علاوہ کسی سے امید اور خوف نہیں رکھنا چاہیے, اور خدا کی توحید اور شرک کے اگینسٹ وہ لوگ چلتے رہے. اسی طرح آج کی یونیورسٹی کی بنیاد ہم رکھتے ہیں, تھوڑی سی قربانی دے دیں और 5 लाख डॉलर ये हमारा टारगेट। मकसद नहीं है, जरिया है। मकसद तो वही तालीम है, मकसद तो वही मुसलमानों की हालत को संवारना है, मकसद वही मशरकी अलूम का आया है, मकसद वही है कि हम अपनी आइंदा न चल। अब हम लोग जो भी आप लोग सुन रहे हैं, हमारा ख्याल है हम सब लोग उम्र के उस हिस्से से गुजर गए जिस जमाने में कोई खुद से बहुत बड़ी तालीमी चीजें करनी होती हैं, डॉक्टरेट हो गई, इंतहा को पहुंच गए, जॉब हो गई, इंजीनियर बन गए, कुछ बन गए। अब हमारी अगली नस्लें हैं, हम उनके लिए एक अच्छा तोहफा दुनिया में छोड़ के जाएं, एक अच्छा इदारा दुनिया में छोड़ के जाएं और बुनियाद के पत्थर बन जाएं जिन्हें चाहे कोई ना जाने, कोई ना देखे, कोई ना नाम लेने वाला हो, लेकिन इन सब का परवरदिगार जानता है कि किस किसने क्या कुर्बानी दी और इन सब का रब जानता है कि किस किसने इस मौके पे एक अच्छे काम में हिस्सा लिया। और यकीन अगर अल्लाह ही के पास है और वो ऐसी जिंदगी है जिसके कोई इंतहा नहीं है, जो खुदा के यहाँ पहुंचना है, तो आपसे दरख्वास्त ये है कि ऐसा एक जरिया है इस मकसद तक पहुंचने का, तो आप लोग इसके मुतालिक सोचें संजीदगी से कि हमें ज़कात और सदक़ात, हमने पहले भी अर्ज किया फिर कहते हैं अपनी असल रकम जो है उसकी बात नहीं है। अल्लाह ताला आपको बरकत दे और आपके कारोबार में, बचत में, नौकरी में अल्लाह ताला बरकत से नवाजे, वो माल मकसूब नहीं, बल्कि इतना सा है कि मुसलमान जब अपनी ज़कात और सदक़ात अलग करते हैं उसी के नाम अच्छे मसरफ में इस्तेमाल करें। तो वो अगर 5 लाख डॉलर इस साल ये टारगेट अचीव कर लेते हैं और जमीन का बयाना हो जाता है, तो बस फिर इसके बाद नेक्स्ट इंशाल्लाह प्रोग्राम फिर देखेंगे। उम्मीद है आप इन गुजारिशात को और से अगर रिकॉर्डिंग हो गई है तो फिर से सुनेंगे, और ये 2 दिन के बाद जो तो रमज़ान शुरू हो रहा है इसमें इंशाल्लाह हम 5 लाख का टारगेट अचीव करने में कामयाब होंगे। अल्लाह ताला मदद फरमाए और आपका शुक्रिया। आपने तो जैसे बात सलाम।